मानव है मेरे राम। अब आक्रमण होना है खर दूषण दशरा और उनकी सेना का आक्रमण होना है राम। राम तैयारी में है, स्ट्रेटेजी बना रहे हैं और अब यहां एक अलग घटना घटने जा रही है मेरे राम। क्या घटना घटने जा रही है कि राम के मन में एक पुरानी बात उभर आई है। पुरानी बात उभर आई है, थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। घटना अयोध्या की, पिता दशरथ की वचनबद्धता के कारण और कैकेयी से उस विचार को जानकर राम तत्काल ही वनवास के लिए प्रस्तुत हो गए। मेरे राम तुम्हें याद है, अभी अभी ब्याह के आए हैं राम, सीता कुलवधू होकर आई है अयोध्या। कोई सोच नहीं सकता था कि सीता भी वन जाने के लिए स्वयं प्रतिबद्ध हो जाएंगी। जिसके हाथ की मेहंदी न धुली हो वो तैयार है वन जाने के लिए। सीता को साथ ले चलने में राम हिचकिचा रहे, विचलित हो रहे हैं। डेविएशन है कि नव वधु को एकदम से वन में कैसे ले जाए। ये तो कभी वन में गई भी नहीं है। राम तो अभी अभी वन में होते हुए ही पहुंचे थे मिथिला, और उसके पहले अध्ययन भी किया था वशिष्ठ के वनाश्रम में, और आखेट भी करते रहे हैं वनों में। तो राम को तो थोड़ा अनुभव वन का है। सीता ने राम के विचलन का अनुभव, डेविएटेड है मेरे राम अनुभव के। वो थोड़ा समय हुआ है सीता को रामा हुए, लेकिन ये भारत भाव भारत है। भारत विश्वगुरु इसीलिए है कि इसने पूरे विश्व को भावों की विरासत सौंपी है। भारतीय स्त्रियां पूरे विश्व में आदर की पात्र आज भी क्यों हैं? क्योंकि वे भाव निष्ठ हैं, विचार निष्ठ भी है और भाव निष्ठ भी है। भाव निष्ठता आसान नहीं होती, क्योंकि भाव तो पल पल बदलते हैं। विचारों में स्थिरता भी होती है मेरे राम, कुछ ज्यादा देर तक ठहरते हैं। भाव तो एक ऐसा तत्व है जैसे पानी की एक बूंद आसमान से गिरती है और समंदर में समा जाती है, उसका जीवन ही कितना है। ऐसे भावों पर चलने वाला भारत है। तो सीता तैयार है वन गमन के लिए, राम नहीं चाह रहे। सीता कटाक्ष कर बैठी है राम पर, कटाक्ष कर दे और कहा, सीता ने कहा राम से कि मेरे पिता को नहीं पता था कि वो अपनी बेटी का विवाह एक स्त्री से कर रहा है। सीता ने राम को स्त्री बताया और राम को बड़ा चुभ गया, क्योंकि भारतीय पुरुष को चुभता भी बहुत है, यह भी खास बात है। इतना दूसरे समाजों में पुरुष को चुभता नहीं है, भारतीय पुरुष को बहुत जल्दी चुभ जाती है बहुत सी बात। सीता का यह कहना राम के पुरुषत्व के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई। और पुरुषत्व जो होता है उसके लिए अपनी प्रिया की आंखों में प्रशंसा देखना जीवन का सबसे बड़ा पुरस्कार भी होता है। राम को अवसर मिल रहा है ये पुरस्कार माना। हालांकि राम सोचते हैं, उन्हें आश्चर्य है, आज भी आश्चर्य है, दस वर्ष बीत गए हैं विवाह को। राम को आश्चर्य इस बात का हो रहा है कि आखिर सीता ने ऐसी चुनौती क्यों दी। सीता तो स्वयं ही राम के पुरुषत्व को देख चुकी, धनुष भंग करना, वो भी पिनाक का भंग करना, परशुराम के दूसरे धनुष वैष्णव धनुष को चढ़ाना और पलभर में वनवास के लिए प्रस्तुत हो जाना, क्या ये राम का पुरुषत्व नहीं था? और नहीं था तो क्या था? ये तो सब पहले ही देखे। सीता ने राम के ताड़का वध, सुबाहु के वध के बारे में भी सुन रखा था। सीता ये भी जानती थी उस क्षण अयोध्या में कि राम के पास दिव्यास्त्र भी हैं, ऋषि विश्वामित्र के दिए हुए। राम ऐसा लगा तो था कि सीता ने अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए राम के पुरुषत्व को चुनौती दे डाली है। सीता का अभिप्राय गंभीर नहीं, लेकिन मेरे राम, राम तो पुरुष हैं। राम के अंतस में सीता की चुनौती बैठी हुई है, बैठ गई, अभी मुक्त नहीं है राम सीता की इस चुनौती से। राम के सामने, उनके मस्तिष्क में पूरी वनवास यात्रा चल रही है, फ्लैशबैक चल रही है। प्रयाग चित्रकूट होते हुए राम दंडक वन और पंचवटी में पहुंचे थे। वनवास के 10-10 वर्ष भी बीत रहे। राम अंतस बोल रहा कि अभी तक इस पूरी समयावधि में सीता ने राम के प्रबल पुरुषत्व का अनुभव नहीं किया है, नहीं किया है। कुछ मौके आए थे जब राम ने राक्षसों का वध किया था, लेकिन राम ने अभी तक किसी राजा की सेना से युद्ध में विजय प्राप्त नहीं की, कोई मौका ही नहीं आया। राम ऐसा मौका तलाश, शूर्प नखा के घायल होकर चले जाने के बाद तय हो कि पंचवटी पर आक्रमण होना है, और यह आक्रमण छोटा नहीं होना है कि चार राक्षस आएंगे और राम से लड़ेंगे और सीता पर हमला करेंगे, ऐसा नहीं होगा। राम की अंतश्चेतना जानती है, अच्छी तरीके से जानती है कि यह भीषण आक्रमण होगा। यह आक्रमण इसलिए भीषण होगा कि श्रीलंका के राज्य की राजकुमारी के नाक कान काटे हैं लक्ष्मण ने, और शूर्पनखा जो चाहती थी वो उसे नहीं मिला है, इसलिए आक्रमण भयानक होना है। राम ने रणनीति बनाई और लक्ष्मण को सीता की सुरक्षा में लगा दिया और आदेशित किया राम ने अयोध्या के वनवासी राजकुमार ने आदेशित किया अपने छोटे भाई को कि जाओ और पास में स्थित एक गुफा में सीता को ले जाओ और सीता की सुरक्षा करना ही एकमात्र तुम्हारा कर्म है। ये आदेश दिया राम ने लक्ष्मण को। लक्ष्मण को ये अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन कर भी क्या सकता। और राम राम ने अकेले ही राक्षस सेना का मुकाबला करने का फैसला किया। आ गए खरदूषण, त्रिशिर और उनकी 14,000 राक्षसों की सेना। राम अकेले हैं, केवल अकेले हैं राम। राम है उनका धनुष है, उनका तुणीर है, उनके शस्त्र हैं और सामने है खर दूषण त्रिशिर और 14,000 की सेना। मेरे राम, कल्पना करो 14,000 आदमी नहीं है सामने, राक्षस है सामने और उनके सामने है कोमल गात अकेले राम। तीर कब चलता है और तुणीर से कब दूसरा तीर हाथ में आता है कोई जान नहीं पाता, कोई समझ नहीं पाता। हतप्रभ है कौन, खर दूषण त्रिशिर सब देख रहे हैं राम की युद्ध कला को। क्या भीषण कला है, दुर्धर्ष है राम। राम लड़ रहे हैं, सामने उनके हैं खर दूषण त्रिशिर 14,000 राक्षस, लेकिन राम नहीं लड़ रहे हैं सबसे। राम तो लड़ रहे हैं सीता के उस कटाक्ष से कि तुम में पुरुषत्व नहीं है, अस्तित्व है। राम अपने अस्तित्व का परिचय दे रहे हैं, अपने एग्जिस्टेंस को प्रमाणित कर रहे हैं राम। जुनून की हद से बाहर है राम। कब सारे 14,000 राक्षस लाशों के ढेर में बदल गए कोई नहीं जान पाया। जब गिद्ध और चील अपने महाभोज के लिए मंडराने लगे, महाभोज की तैयारी हो गई, लाशें ही लाशें हैं, रुधिर की नदियां बह रही हैं, केवल रुधिर है, लाशें हैं, कटे हुए सिर हैं, कटे हुए हाथ हैं, गिरे हुए शस्त्र हैं, अस्त्र हैं। रक्त और लाशों ने जंगल को कुरूप कर दिया है। पूरी पंचवटी के आसपास श्मशान घाट बन गया है।
मही परत उठी भट भीरत मरत न करत माया अति घनी सुर डरत 14 साहस प्रेत बिलोक एक अवध धनी सुर मुनि सबै प्रभु देखी माया नाथ अति कौतिक करो देखई परस पर राम कर संग्राम रिपुतल लरि मरु देखई परस पर राम कर संग्राम रिपुतल लरि मरो।